समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कभी कभी सोचती हूँ हम इंसान भी कितने समझदार हैं ना, दिखावे में पड़े रहते हैं। कीमती फर्नीचर, महंगे कपड़े, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आकर्षक एक्सेसरीज और इस तरह की ढेर सारी चीजें जिन्हें खरीदने के लिए एक बड़ा अमाउंट, ढेर सा पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि भूल जाते हैं कि असल में जो बेशकीमती यानी अमूल्य है वो तो निःशुल्क है। जैसे हमारी नींद, सेहत, शांति, आनंद, प्रेम, खुशियां, जिनकी कोई कीमत हमें चुकानी नहीं पड़ती, मगर इनकी कीमत हमें तब समझ में आती है जब ये हमसे दूर हो जाती है। माना हर चीज जरूरी है, मगर भौतिकतावादी चीजों को हासिल करने के साथ हमें इन अनमोल चीजों की भी कद्र आज ही से शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल शुरू करते हैं आज का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी गोल्ड के आज सवेरे कार्यक्रम की आज की कड़ी में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं आज फिर से सायरा मुज्तबा। कैसी है सायरा?
बिल्कुल बढ़िया नई। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड टू ऑल आवर लिसनर्स एज वेल हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे व्हेन वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट हेडलाइंस टू प्रेप यू अप फॉर द डे, ताकि आप भी अपने दोस्तों से जब चर्चा करें तो थोड़ा सा अपर हैंड आप करें दैट यू ऑलरेडी नो दिस न्यूज इजंट इट
राइट।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन आवर मेट्रो न्यूज सेक्शन वील हैव द न्यूज फ्रॉम योर वेरी ओन सिटी, देखेंगे आपकी अपने शहर में क्या कुछ चल रहा है और मौसम का हाल तो जानेंगे ही। उसके अलावा नईम ने अपनी ओपनिंग लाइन से बहुत खूबसूरती से बयान किया दैट द वैल्यू ऑफ ट्रू हैप्पीनेस
राइट।
एंड मार्च 20 इंडीड नईम इज अ स्पेशल डे बिकॉज इट वॉज डेजिग्नेटेड बाय द यूएन एज वेल एज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। So
okay.
Yes, of course.
Unknowingly,
unknowingly, all right. So yes, today is the International Day of Happiness, and as Naeem clearly mentioned, that apart from running after materialistic things that are perishable, but what really remains with us, and maybe in the winters of our life when we remember, it's only the close bonds that we share with our friends, with our families, with our neighbors, and the memories that we create and give to others. And also receive from
undoubtedly, others. Undoubtedly. और पता हमको ये सारी बातें हर किसी को होती हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे हमें अगले दिन की जब प्लानिंग करनी होती है तो हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा आज इस चीज की कमी रह गई, कल से हमें इस चीज पर मेहनत करनी है। भूल जाते हैं भाई रात को जो आप सो रहे हैं वो नींद तो आपको फ्री में मिली है ना।
एब्सोल्यूटली, इनफैक्ट फ्री में मिलना है, जितनी चीजें हैं जो फ्री में मिलती हैं
वही सबसे ज्यादा कीमती हैं,
बेशकीमती होती हैं। एब्सोल्यूटली, अ गुड स्लीप एंड ऑफकोर्स लव इन योर रिलेशनशिप्स और एक दूसरे से खुलूस, यही सब तो जिंदगी है।
बिल्कुल।
Well, on a very positive note, we are starting this show today, and just to talk about the International Day of Happiness, just a little bit trivia. Now, the day has been observed by the UN since 2013 to honor the value of happiness. We'll talk more about this later in our segment, but first, let's begin with the headlines.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐसा मंच है जो स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों की दुनिया के संबंधित पक्षों को एक साथ लाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। तीन दिन का स्टार्टअप महाकुंभ सोमवार को आरंभ हुआ था। इसमें एआई, बीटूबी, एग्रीटेक, डीटेक, क्लाइमेट टेक, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, फिनटेक, इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर पर विशेष मंडप बनाए गए हैं। इस आयोजन का उद्देश्य उद्यम पूंजीपतियों, निवेशकों और संबंधित साझेदारों सहित आविष्कारकों के साथ स्टार्टअप को जोड़ना है।
The Election Commission of India, ECI, has notified the category of electors mentioned for the purpose of facility of voting through postal ballot as absentee voters in the category of persons employed in essential services. The list includes employees of Metro, Railways, BSNL, Electricity and Health Departments, Fire Services, Postal Services, Aviation, Disaster Management, Doordarshan and Akashvani, and media persons authorized by the Commission for polling day coverage, among others. The persons can cast vote by postal ballot on duty on the day of the poll in the current general elections, legislative assemblies and by elections in 26 assembly constituencies in 13 states.
सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा इन समेत कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
The Lokpal has ordered a probe by Central Bureau of Investigation CBI against former TMC MP Mahua Moitra in cash for query charges. The Lokpal in its order has said that there is sufficient prima facie evidence against Moitra on record that deserves deeper scrutiny. The directive came while deciding a complaint by BJP Lok Sabha member Nishikant Dubey, alleging that Moitra had asked questions in the Lok Sabha in exchange for cash and gifts from Dubai-based businessman Darshan Hiranandani. It has directed the CBI to complete investigations in all aspects of the allegations against Moitra within 6 months and also file periodical reports every month regarding the status of the investigation. It added that after careful evaluation and consideration of the entire material on record, there remains no doubt regarding the fact that the allegations levelled against Moitra, most of which are supported by cogent evidence, are extremely serious in nature, especially in view of the position held by her. Mahua Moitra was expelled from the Lok Sabha in December last year based on a recommendation by the Ethics Committee.
संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी काम करती है, अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा पहले इस साल 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
Gross direct tax collection has registered a growth of 18.74% during the current financial year. According to the Finance Ministry, gross direct tax collection stands at over 22,27,000 crore rupees, which is more than 18,75,000 crore rupees reported in the corresponding period of financial year 2022-23. The Finance Ministry said, refunds amounting to 3,36,808 crore rupees have also been issued in the financial year 2023-24, which is 12.74% higher in comparison to the refunds issued during the same period in the preceding year.
स्विस ओपन बैडमिंटन में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली स्विट्जरलैंड के बेसल में महिला युगल वर्ग के प्री क्वार्टर में पहुंच गई हैं। उन्होंने राउंड 32 में केरी शू और एनी शू की अमरीकी जोड़ी को हराया। पुरुष युगल में हरिहरन अम्स करुणन और रूबन कुमार की भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग दौर में फ्रांस के नातान बेग्गा और बेप्टिस्ट लबार्थे को हराया। मिश्रित युगल में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी ने क्वालिफाइंग राउंड में ब्राजील की सैनिया लिमा और डेवी सिल्वा को हराया। इससे पहले पुरुष एकल क्वालिफायर में सतीश कुमार करुणाकरण ने अल साल्वाडोर के उरियल केन्जुरा को हराया, जबकि समीर वर्मा ने ब्राजील के कोएल्हो डी ओलिवेरा को पराजित किया। आज लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत और कई अन्य खिलाड़ी BWF सुपर 300 इवेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। तो ये तो थी देश दुनिया की खबरें। अब अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ आ जाते हैं सायरा।
एब्सोल्युटली नहीं, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई। Chennai recorded near normal day temperatures for the last 2 days. The Met Department said that temperatures are likely to continue in the same way this month. Though high humidity is being witnessed, the sea breeze from the Bay of Bengal will keep the temperatures under control till next month. Temperatures touched 35 degrees for the last few days due to the delayed entry of sea breeze. Interior districts of the state are likely to record 2 degrees above normal temperatures. Due to the enforcement of the Model Code of Conduct, new check posts have come up on many roads in the city and suburban areas. The district electoral officer said that monitoring has been stepped up to check for violation of the model code of conduct. Flying squads have been involved in taking photos and videos of the vehicles which carry luggages and passengers. A central control room has also been set up for voters to register their complaints. Moving on to Bengaluru, World Social Work Day was celebrated in Bengaluru City University. The Vice Chancellor, Professor Lingaraj Gandhi, inaugurated the event in Bengaluru. Thereafter, he greeted all the social workers across the world who are working for the upliftment of the downtrodden. He called upon them to dedicate their time and energy to empower the poor, deprived and exploited sections of the society so that they too can live a life of dignity. He further said that they should devote their knowledge and skills for social welfare. Women and Child Development Department Deputy Director from the Bengaluru Division, Dr. Siddharamanna, said that social work graduates in the state have ample employment opportunities. He asked the social workers in the state to achieve social upliftment for the nation to progress. On the occasion, students demonstrated scientific methods to address social problems. And now it's time to see what's going on in Hyderabad. Well, Jharkhand Governor C.P. Radhakrishnan will take charge as the Governor of Telangana later this morning. President Draupadi Murmu has given additional responsibilities of Telangana state to Jharkhand Governor C.P. Radhakrishnan following the resignation of Dr. Tamilisai Soundararajan 2 days ago. Radhakrishnan has also been given additional responsibilities as the Lieutenant Governor of Puducherry. Radhakrishnan will take charge at 11:15 a.m. this morning at the Raj Bhavan in Hyderabad State High Court. State High Court Chief Justice, Justice Alok Aradhe, will administer the oath. Meanwhile, Radhakrishnan thanked President Murmu for giving him additional responsibilities of Telangana and Puducherry. In a Twitter post, he said that he is humbled and blessed to be given the additional responsibility to serve as the Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry. Meanwhile, the authorities have made elaborate arrangements for the event at the Raj Bhavan. So, Naeem, ye to baatein thi in teen shehron ki. What is the latest buzz that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji, pehle main Delhi ki shuruaat karun.
Absolutely.
Ji, Delhi police ne Lok Sabha chunavon mein social media ya SMS se aapattijanak samagri ke prasar ki chunauti se nipatne ke liye Sanyukt Police Ayukt B. Shankar Jaiswal ko nodal adhikari niyukt kiya hai. Delhi police ne kaha ki SMS aur social media platform ke madhyam se prasarit aapattijanak sandesh chunav kanunon, aachar sanhita aur aayog ke nirdeshon ka ullanghan karke chunavi prakriyaon ko बाधित कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने लोगों से आपत्तिजनक सामग्री की सूचना तुरंत नोडल अधिकारी को देने का भी आग्रह किया. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने ब्रेन से संबंधित जटिल समस्याओं के त्वरित पहचान के लिए अत्याधुनिक एमआरआई मशीन 7 टेस्ला का उपयोग करने पर विचार कर रही है. फिलहाल एम्स में 1.5 और 3 टेस्ला मशीन का उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ब्रेन से संबंधित जटिल समस्याओं का पता 7 टेस्ला एमआरआई मशीन के जरिए लगाया जा सकता है और उसका इलाज भी किया जा सकेगा. डॉक्टर गायकवाड़ ने बताया कि इसका उपयोग ड्रग रिफ्लेक्टरी एपिलेप्सी, स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर जैसे अन्य जटिल समस्याओं में अत्याधुनिक मशीन का उपयोग किया जाएगा. उन्होंने बताया कि विश्व के कुछ देशों में इस नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जो मरीज के लिए सुरक्षित है. उत्तर रेलवे द्वारा नई दिल्ली स्थित बड़ौदा हाउस में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने की, जिसमें उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक सहित सभी प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्षों, मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधकों तथा मुख्य कारखाना प्रबंधकों ने भाग लिया. इस अवसर पर महाप्रबंधक ने बताया कि 2022 के दौरान हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर रेलवे को प्रथम पुरस्कार के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड और रेल इंजन कारखाना चारबाग लखनऊ को आदर्श कारखाना के रूप में रेल मंत्री राजभाषा शील्ड और नकद पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है. उन्होंने ई ऑफिस में हिंदी का कार्य और बढ़ाने के भी निर्देश दिए. और अब सायरा, मैं कुछ मुंबई की खबरें ले लेती हूं. महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चौकलिंगम ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में धन या शक्ति का कोई दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है. ईएसएमएस मोबाइल ऐप पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में सीईओ ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा. ईएसएमएस मोबाइल ऐप का उपयोग आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे क्षेत्र से नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु, मुफ्त उपहार और अन्य वस्तुओं जैसे पकड़ी गई या जब्त की गई वस्तुओं के डेटा को डिजिटाइज करने के लिए किया जाता है. एक और खबर महाराष्ट्र से है। मुंबई में बेलारूस के नव नियुक्त महावाणिज्य दूत अलेक्सांद्रा मात्सुको ने कहा है कि बेलारूस भारत के साथ व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने का इच्छुक है। मंगलवार को मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के साथ एक बैठक के दौरान महावाणिज्य दूत ने कहा कि उनका देश बेलारूस और महाराष्ट्र के ब्रेस्ट क्षेत्र के बीच सिस्टर सिटी सहयोग के लिए विशेष रूप से उत्सुक है। महावाणिज्य दूत ने राज्यपाल को बताया कि बेलारूस का आंतरिक मंत्रालय मुंबई को यातायात प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रदान करने का इच्छुक है। इस बीच मानवीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बेलारूस सरकार पुणे के पास एक अनाथालय से 30 बच्चों को भ्रमण के लिए बेलारूस ले जाएगी। ताड़ोबा बाघ अभयारण्य और चंद्रपुर में वनस्पति उद्यान की अपनी हालिया यात्रा का उल्लेख करते हुए महावाणिज्य दूत ने पर्यावरण संरक्षण में भारत के प्रयासों की सराहना की। महाराष्ट्र में बेलारूस के महावाणिज्य दूत का स्वागत करते हुए राज्यपाल बैस ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र और बेलारूस के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग, विशेष रूप से छात्र आदान प्रदान, संकाय आदान प्रदान और सांस्कृतिक आदान प्रदान देखकर खुशी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों का पालन न करने पर दो बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पहले मामले में अग्रिमों पर ब्याज दर और बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर 1,31,80,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। मंगलवार को मुंबई से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि 31 मार्च 2022 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षण मूल्यांकन के लिए बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला कि बैंक ने एक ही ऋण श्रेणी के भीतर कई बेंचमार्क अपनाए हैं। ये एनएसएमई को दिए गए कुछ फ्लोटिंग रेट ऋणों पर ब्याज दर को बाहरी बेंचमार्क ऋण दर पर बेंचमार्क करने में भी विफल रहा। बैंक ने सीआरआईएलसी को कुछ उधारकर्ताओं की बाहरी रेटिंग की भी गलत सूचना दी। दूसरे मामले में डीसीबी बैंक लिमिटेड पर 63,60,000 का आर्थिक दंड लगाया गया। 31 मार्च 2022 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए बैंक के वैधानिक निरीक्षण के अनुसार आरबीआई ने पाया कि कुछ एमसीएलआर से जुड़े फ्लोटिंग रेट अग्रिमों में निर्धारित आवधिकता पर ब्याज दरों को रीसेट करने में विफल रहा है। ये कुछ फ्लोटिंग रेट खुदरा ऋणों और एमएसएमई को फ्लोटिंग रेट ऋणों की ब्याज दर को बाहरी बेंचमार्क उधार दर पर बेंचमार्क करने में भी विफल रहा था। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कर्मियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। तो ये खबरें थी दिल्ली और मुंबई से, और कोलकाता से भी मेरे पास एक छोटी सी खबर है। राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को दो विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। वह है पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक और हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक। हावड़ा नगर निगम विधेयक मंगलवार को ही राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद दोनों विधेयकों के राज्य सचिवालय नबन्ना भेज दिया गया। महानगरों से बहुत सारी खबरें हो गई। हम महानगरों की मौसम की बात कर लेते हैं।
यस एब्सोल्युटली नहीं। इफ यू टॉक अबाउट चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ऑल दीज थ्री सिटीज आर गोइंग टू हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई टुडे। वेल हैदराबाद इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव सम लाइट रेन और ड्रिजल टुडे। If you talk about the temperatures, well, in Chennai, they will hover between 26 and 33 degrees Celsius. In Bengaluru, temperatures will hover between 21 and 34 degrees Celsius. While in Hyderabad, the temperatures will hover between 24 and 35 degrees Celsius. What about the other cities, Naeem?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और कोलकाता में दोपहर बाद बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये तो हुई बात मौसम की, और अब आते हैं आज के इतिहास पर। जैसे कि आपने शुरुआत में ही बात करी थी कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है,
yes,
तो उसके बारे में आप कुछ और भी बताने वाली थी।
वेल जस्ट टू रिमाइंड आवर लिसनर्स दैट टू अचीव द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग, द यूएन एस्टैब्लिश 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन 2015, नेमली रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इराडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। वी कैन ऑल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम जेके राउलिंग्स कोट इन आवर लाइव्स विच सेज दैट happiness can be found even in the darkest of times if only one remembers टू टर्न ऑन द लाइट.
बिल्कुल सही बात है. और इसके साथ ही ये है ना, हाँ, और इसके साथ ये भी बात याद रखनी चाहिए हमें कि ये जिंदगी जो है एक चक्र है. आज अंधेरे की तरफ है तो कल रोशनी की तरफ आएगी ही.
यस एब्सोल्यूटली. एंड बिकॉज यू नो मेन आर सोशल एनिमल्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन बिग सिटीज स्पेशली इन दिल्ली मुंबई वीसी के पड़ोसी को पड़ोसी की खबर नहीं होती, विच इज वेरी बैड बिकॉज
क्राइम रेट्स भी यहाँ ज्यादा.
यस बट दैट्स हाउ दीज डेज आर प्रॉब्ली अ रिमाइंडर दैट यू एक्चुअली नो द वेलबींग ऑफ योर नेबर, वॉट आर दे डूइंग, बिकॉज दैट इज वॉट विल गिव यू ट्रू हैप्पीनेस. जस्ट जस्ट स्माइल, एज वी से स्माइल इज ऑल्सो चैरिटी इज इंट इट. सो मे बी वी शुड जस्ट स्प्रेड स्माइल्स इन ग्रीटिंग आर नेबर्स विद अ स्माइल, ग्रीटिंग आर फ्रेंड्स विद अ स्माइल. दैट विल नॉट ओनली गिव देम हैप्पीनेस, बट सिंस हैप्पीनेस हैज अ रिफ्लेक्टर, इफ आई विल गिव यू हैप्पीनेस, योर स्माइल विल डेफिनेटली गिव मी हैप्पीनेस इन रिटर्न, इज इंट इट.
एंड दैट्स हाउ वी विल स्प्रेड हैप्पीनेस.
यस.
एंड आज आपने इतनी बड़ी बात करी, इतनी अच्छी बात बताई है, तो मैं इसके बारे में, आज के दिन के बारे में ये भी बता दूं कि 2010 से 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत हुई. ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स ने भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को रेड लिस्ट में डाला है. 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित किया था और इसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी इस प्रजाति की जनसंख्या को बढ़ाना है. और आज के दिन 20 मार्च को 1800 में इतालवी भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ अलेसांद्रो वोल्टा ने बैटरी की खोज के बारे में सूचना दी थी.
On this day in 1602, the United East India Company of the Netherlands, that is the Dutch East India Company, was chartered by States General of Holland, and during its 96-year history, it became one of the world's most powerful companies.
1904 में शिक्षक, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता के कार्यकर्ता चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने भारत आए थे. और आज ही के दिन 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रकाशन हुआ था.
On this day in 1926, for the first time in the history of the competition, Scotland beat England for rugby's Calcutta Cup in London. And in 1959, for the first time, officials of the Indian government confirmed reports of widespread resistance to Chinese occupying forces in Tibet. Open warfare erupted in the capital city of Lhasa. Also, on this day, the Muslim Satya Shodhak Samaj was established in 1970. In 1977, the sixth general election ended. Then, it was the first time that the Indian National Congress Party lost in India.
1987 में अमरीकी कंपनी द्वारा एड्स के इलाज के लिए दी जाने वाली पहली एंटी एड्स दवा AZT को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी थी. और 1991 में बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की राष्ट्रपति बनी थी.
एंड ऑन दिस डे 1992, सत्यजीत रे, अ वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वॉज प्रेजेंटेड द भारत रत्न एट कोलकाता.
क्या बात है. और आज ही के दिन जिन हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, पहले हम उनको याद कर लेते हैं, फिर कुछ और हस्तियों को भी याद करेंगे.
एब्सोल्युटली. द फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज
खुशवंत सिंह, जिनकी आज पुण्यतिथि है. भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार थे खुशवंत सिंह. उन्होंने पत्रकार के रूप में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा के सम्माननीय पद पर भी खुशवंत सिंह ने कार्य किया. पद्मभूषण, पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से 1974 और 2007 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है.
Yes, a remarkable author, writer, lawyer, diplomat, journalist and columnist and also later a politician, we can say. Khushwant Singh was a great conversationalist above all because his columns were remarkable, isn't it?
Bilkul.
And especially his experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan, a very remarkable novel.
और Train to Pakistan के अलावा Delhi, The Company of Women भी उनके लिखे हुए बहुत मशहूर उपन्यासों में से कुछ एक है.
Yes, and Train to Pakistan was actually adapted on the celluloid also in Japan by the same name.
जी बिल्कुल बिल्कुल. और इसके अलावा खुशवंत सिंह जो थे वो एक बहुत बड़ी बात यह कि 1951 में आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं.
Yes, Khushwant Singh was awarded the Padma Bhushan in 1974 and obviously that in 2000 he was awarded the Padma Vibhushan, which is the second highest civilian award in India.
1986 tak wo Rajya Sabha ke manonit sadasya bhi rahe. Aur aaj hi Sayara Punyatithi hai Marang Gom ke Jaipal Singh Munda ki bhi. Wo Bharatiya hockey ke prasidh khiladiyon mein se ek the. 1928 mein Amsterdam mein aayojit Olympic khelon mein Bharatiya hockey team ke kaptan unko niyukt kiya gaya tha. Olympic mein Bharat ne Jaipal Singh ke netritv mein desh ke liye स्वर्ण पदक प्राप्त किया था.
And now if we talk about some of the birth anniversaries or birthdays, we are starting with Dara Shikoh, who was born on this day in 1615. He was the eldest son and heir apparent of Mughal Emperor Shah Jahan. Dara Shikoh was designated with the title Padshah Zada-e-Buzurg Martaba, which is Prince of High Rank, and was favoured as a successor by his father and even his elder sister, Princess Jahan-Ara Begum. He had been given the title of Shah-e-Buland-e-Iqbal by Shah Jahan. And what is remarkable about Dara Shikoh is that he was very much inclined not towards military conquest or whatever, but towards mystical aspects of life. He was a great scholar of Sufism. He was a great scholar of Vedas, because he was very well versed in Persian, Sanskrit, Hindi.
A very rare example,
because zyadatar to badshah log apne military conquest mein lage rehte hain.
But halanki inke sath bhi ek cheez ye rahi ki shuru mein Dara Shikoh ne Punjab ka unko subedar banaya gaya tha aur uska shasan unhone apne rajdhani se apni pratinidhiyon ke zariye chalaya. Ye bhi ek
zindagi ka, because he was never inclined towards occupying political power. He was more, as I said, towards Vedanta philosophy and even to the Sufi philosophy in Islam. Or in fact, he authored the work The Confluence of the Two Seas, which argues for harmony of Sufi philosophy in Islam and Vedanta philosophy in Hinduism.
Right. Aur aaj tak bhi dekhiye, aur sab cheeze hum chhod dein, apni Delhi mein hi Dara Shikoh ke naam par Dara Shikoh library bhi hai, jahan log jana aur padhna pasand karte hain. Acha, aaj hi punya tithi ki bhi hum baat kar le, Robert John Christo ki punya tithi bhi hai Sairaj, jo bhartiya cinema ke khalnayak abhineta hone ke alawa australiyai bhartiya civil engineer bhi the. Do dashak tak kareeb 200 hindi filmon mein mukhya khalnayak ya uske sahayak ke kirdaar mein inhone abhinay kiya. Hindi cinema mein बॉब क्रिस्टो के नाम से मशहूर थे वो, और मशहूर अभिनेत्री परवीन बाबी से मिलने एक बार वो भारत आए थे, और उसी दौरान उन्हें संजय खान की फिल्म अब्दुल्ला में ब्रेक मिल गया. बस उसके बाद उनका फिल्मों का सफर चल पड़ा, और इस फिल्म में उन्होंने किरदार क्या निभाया, उनकी और एक के बाद एक फिल्में आती चली गई जिनमें कुर्बानी, मर्द, नास्तिक आदि शामिल हैं. उनकी आवाज में एक डायलॉग सुनते हैं और ये देखते हैं कि भले ही वो इंडिया आ गए थे, इंडिया आकर के उन्होंने इतनी सारी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम किया, पर उनका एक्सेंट वही रहा. डायलॉग सुनते हैं.
तुम्हें लोग से टाइगर का इंट्रोडक्शन बराबर नहीं कराया जंगी. अच्छा, बेईमानी के बिजनेस में ईमानदारी हमारा काम का फाउंडेशन है जनी. 3000 लेने क्यों नहीं आया हमारे पास जंगी.
और अगर फिल्मों की बात चली ही निकली है तो हम एक ऐसी ख्याति प्राप्त भारतीय पार्श्व गायिका का जिक्र कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है. हमारे जो फिल्म संगीत प्रेमी हैं वो पहचान गए होंगे, हम अलका याग्निक की बात कर रहे हैं, जिनका 3 दशक पुराना करियर है, और इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मी गीत दिए हैं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है.
यस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. शी हैज रिसीव्ड सेवरल एक्लेड्स इंक्लूडिंग 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 2 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट Association Awards, and a record 7 Filmfare Awards for Best Female Playback Singer. And I think that we are the children of 90s. I believe that the 90s ka jo daur hai wo Alka Yagnik aur Kumar Shanu ke bina to tasavvur hi nahi kiya ja sakta, isn't it?
Acha, Alka Yagnik ke bare mein ek achhi baat ye hai, jaise maine abhi thodi der pehle kahi thi, inka bhi khaas baat ye rahi ki Akashvani Kolkata Akashvani Radio ke sath inhone 6 saal ki umr mein pehli baar kaam kiya tha, aur 10 saal ki umr tak wo is sangeet mein itni parayan ho chuki thi ki unki maa ko laga ke अब इनको मुंबई ले जाना चाहिए. 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार पायल की झनकार फिल्म के गाने में अपनी आवाज दी, और लावारिस फिल्म का जो गाना था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उसने तो इन्हें बुलंदियों तक ही पहुंचा दिया. उसके बाद कुछ और सॉन्ग्स हैं जिनके बारे में हम क्या बताएं, खुद इनकी आवाज सुन ली क्या.
बिल्कुल.
चांदनी पड़ी हुई है मांग क्यों, अपने ही से पूछ लो।
वाह क्या मधुर आवाज है, और उन्होंने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि उर्दू, गुजराती, अवधी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी गीत गाए हैं।
यस एब्सोल्युटली, ओवर टू एन ओवर ऑफ ओवर 2000 सॉन्ग्स इन अबाउट 1100 फिल्म्स। शी इज द फिफ्थ मोस्ट प्रोलिफिक सिंगर ऑफ ऑल टाइम आफ्टर आशा भोसले, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार।
बिल्कुल, और क्या कहें, अब हमारे पास वक्त तो बच नहीं रहा है, तो कहने के लिए बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम और कब कहें। तो चलिए अभी विदा लेते हैं अपने श्रोताओं से। नईम अख्तर और सायरा मुज्तफा को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
नमस्कार।